कि अगर कृष्ण ने रास लीला रचाई तो हम भी ये कर सकते हैं। और ऐसा कई सहजिया लोग इस कार्य को करते भी हैं। रास लीला के सही उद्देश्य को न जानते हुए वो ऐसे कार्यों में पड़ते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग भी रास लीला कर सकते हैं, अगर रास लीला को सही दृष्टि से देखें और जानें। बाहरी दृष्टि से जब हम लोग देखते हैं तो रास लीला कृष्ण और गोपियों के बीच केवल नृत्य या प्रेम का आदान प्रदान नजर आती है, लेकिन अगर इसके संदेश को हम देखना चाहें तब हम जानेंगे कि यही रास लीला हमें भक्ति की शुरुआत से भक्ति की चरम सीमा अर्थात कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति तक ले जाती है। इस रास लीला का अगर विस्तार से वर्णन करने जाएं तो कई दिन लगेंगे, क्योंकि इस रास लीला में एक एक श्लोक जो भगवान ने कहा या जो गोपियों ने कहा ये बड़ा ही ज्ञान प्रदान करने वाला है। हम लोग इन्हें एक भौतिक युवक युवती के बीच का कोई संबंध मानते हैं, लेकिन जब आचार्यों की दृष्टि से देखते हैं, भक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो इससे बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज के इस अवसर पर हम प्रयास करेंगे कि कुछ एक शिक्षाओं को हम आपको बतलाएं जो हम इस रासलीला से सीखते हैं। रासलीला का प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि शरद ऋतु के समय कृष्ण को स्मरण आया अपने वचन का। कृष्ण ने वचन दिया था गोपियों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति का, जब कृष्ण ने वस्त्र हरण किए थे तो उस वचन का उनको स्मरण आया और कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे वो वचन पूरा करना चाहिए। और फिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर बहुत ही मधुर स्वर बजाने प्रारंभ किए। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि कृष्ण अपने दिए हुए वचन को स्मरण करते हैं और फिर बांसुरी की ध्वनि के द्वारा गोपियों को सूचित करते हैं कि अब आपको मेरे निकट आना है। अगर इसको भक्ति की दृष्टि से देखें तो कृष्ण अपने उस वचन को कि मैं हर उस भक्त की रक्षा करता हूं जो मेरे निकट आना चाहता है, जो मेरी भक्ति करना चाहता है, उस वचन को जब भगवान स्मरण करते हैं जो उन्होंने हर जीव के लिए दिया है, वह हर जीव से प्रेम करते हैं। भगवान की इस सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे कृष्ण प्रेम नहीं करते। हाँ, हम सब ऐसे हैं जो हम कृष्ण से प्रेम नहीं करते, लेकिन कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। तो अपने उस वचन को कि इस जीव को मुझे फिर से वापस अपने धाम लेकर जाना है, पूरा करने के लिए भगवान बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाने का अर्थ शास्त्र में दिया है कि जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी के छिद्रों से वेद प्रकट होते हैं। तो यहां पर जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो वो वेदों को देते हैं, शास्त्रों को देते हैं, जिसके द्वारा जैसे उन्होंने बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के हृदय में प्रवेश करके उनको बाध्य किया अपने सारे कार्यों को त्याग कर, अपनी सारी आसक्तियों को त्याग कर, अपने सारे संबंधों को त्याग कर कृष्ण की ओर भागने के लिए, इसी प्रकार अपने शास्त्र रूपी बंसुरी से वो हर जीव को बाध्य करना चाहते हैं कि वो अपने सारे भौतिक संबंधों को त्यागे, अपनी सारी भौतिक आसक्तियों को त्यागे, अपनी सारी भौतिक भोगों को त्यागे और कृष्ण की ओर भागे। तो फिर भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो जो गोपियां थी वो रह नहीं पाई, उन्होंने बांसुरी की ध्वनि सुनी, जो जैसी थी अपने घर में भागी कृष्ण की ओर। उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा था तो भागी, और कई गोपियों को उनके पतियों ने जाने नहीं दिया। तो ऐसा वर्णन है कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आचार्य समझाते हैं कि दरअसल उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, सभी गोपियों के शरीर आध्यात्मिक हैं, कोई भौतिक शरीर नहीं है। और फिर जब उनके पतियों ने उनको रोका तो श्री कृष्ण की योजना से कुछ समय के लिए उन्हें भौतिक शरीर पर प्राप्त हुआ और उस भौतिक शरीर को वो त्याग कर चली गई। तो उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो उस भौतिक शरीर को वहीं पर छोड़कर अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण के पास चली गई। जीव इस जगत में जब रहता है तो दरअसल वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, जैसे गोपियों के शरीर आध्यात्मिक थे। लेकिन इस जगत में रहने के लिए, जैसे गोपियां अपने घर में अपने पतियों से बाहर जाने के लिए उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त करके उनको छोड़ा, हम लोग इस जगत में रहते हुए भौतिक शरीर को प्राप्त करते हैं। हमारी असली पहचान भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। हम सबको ये जानना चाहिए। आज अगर हम रासलीला का वर्णन सुन रहे हैं तो ये जानना चाहिए कि रासलीला कौन करते हैं। वो कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है, उनका शरीर कोई भौतिक तत्वों से नहीं बना है, ना ही गोपियां भौतिक तत्वों से बनी हुई हैं, वे आध्यात्मिक हैं। और उसी प्रकार हम सब भी आत्मा हैं, आध्यात्मिक हैं, लेकिन केवल हमने भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, भौतिक आसक्तियों को धारण करे हुए हैं, भौतिक इच्छाओं को धारण करे हुए हैं हम सब। तो जैसे गोपियों ने उस भौतिक शरीर को त्यागा और वो कृष्ण के पास जा सकी, इसी प्रकार हमें अपने इस भौतिक अस्तित्व को त्यागना होगा, तब हम कृष्ण के पास जा पाएंगे, कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे, कृष्ण को समझ पाएंगे। इस सारी रासलीला का उद्देश्य क्या है? इस रासलीला का उद्देश्य है कि किस प्रकार कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो। गोपियों ने इतनी जो मेहनत की, इतने प्रयास किए, इतना वैराग्य, इतना त्याग किया, वो केवल इसलिए कि कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हों। तो अब जब गोपियां भागी और वो वहां पर पहुंची जंगल में, तो बड़ा ही सुंदर दृश्य उन्हें देखने को मिला। कृष्ण खड़े हैं और कृष्ण ने उनसे बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूछा कि अरे गोपियों, आओ आओ, आपका स्वागत है, लेकिन इस रात्रि के समय आप यहां पर कैसे आए हैं? जैसे कृष्ण को पता नहीं था कि किसने बुलाया है उन्हें। तो कृष्ण कहने लगे, आप कैसे आई हैं, क्या कार्य है? तो गोपियां बड़ी दुखी हो गई, सोचने लगी, बुलाया तो इन्होंने ही है और अब ऐसे कह रहे हैं। और फिर कृष्ण आगे कहने लगे कि देखो, रात के समय ऐसे इस जंगल में आना ठीक नहीं है, यहां पर बड़े बड़े हिंसक प्राणी हैं, तो आप लोगों के लिए ऐसे समय में आना ठीक नहीं है, आपको वापस चले जाना चाहिए अपने अपने घरों में। तो गोपियों को और क्रोध आ गया कि पहले तो ठीक था कि केवल पूछ रहे थे, अब तो कह रहे हैं कि वापस चले जाए। तो गोपियां थोड़ी सी क्रोधित हो गई और गोपियां कहने लगी कि अरे कृष्ण, एक तो आप ही हमें बुलाते हो और फिर अब कहते हो कि वापस जाएं, हम कैसे जा सकती हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको यहां पर आया हुआ देखकर आपके आने का कार्य, आने का जो उद्देश्य है, उसको समझने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा मुझे लगता है कि आप इस समय ऐसे फूलों को चुनने के लिए आई हैं जो केवल रात्रि में खिलते हैं, और उन फूलों को आप लेकर जाएंगी कल भगवान की सेवा के लिए। स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए। लेकिन फिर भी ये समय ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप फूल चुनने जाएंगे तो नीचे छोटे छोटे प्राणी होंगे, बिच्छू, सांप इत्यादि, जो आपको दिखेंगे नहीं, तो फिर हो सकता है आपको डस लें, तो इसलिए आपके लिए ठीक नहीं है। तो गोपियों ने कहा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा समय तो हम बैठ जाते हैं, अभी यहां इतनी दूर आई हैं हम थोड़ा समय बैठते हैं यहां पर। तो कृष्ण कहते हैं कि हां, वैसे तो कोई गलती नहीं है अगर आप बैठें, क्योंकि आप भी बड़ी सती स्त्रियां हैं और मैं भी ब्रह्मचारी हूं, कृष्ण है नित्य ब्रह्मचारी। तो कृष्ण ने कहा कि वैसे तो कोई गलती नहीं है आप अगर बैठे, क्योंकि आप तो बड़ी पतिव्रता हैं और मैं तो ठहरा ब्रह्मचारी, लेकिन फिर भी आपके और मेरे मन पर मुझे विश्वास नहीं है। मुझ पर है लेकिन मेरे मन पर नहीं है, आप पर है लेकिन आपके मन पर नहीं है, तो इसीलिए आपको वापस चले जाना चाहिए, ऐसा वो कहने लगे। और फिर कृष्ण कहते हैं कि हां, अगर आप मेरी भक्ति करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर ये तरीका ठीक नहीं है। और फिर वो कहते हैं, श्रवणा दर्शना ध्यानात्मयी भावोन कीर्तना न तथा सन्निकर्षेना प्रतियात ततो गृहा। कृष्ण कहते हैं, आप मुझे पाना चाहते हो, मेरी भक्ति करना चाहते हो, तो मैं मार्ग बतलाता हूं, न च सत्न तथा सन्निकर्षेना, मेरे पास रहने से भक्ति नहीं बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है? श्रवणात दर्शनात ध्यानात मई भावोनु कीर्तनात। चार चीजें भगवान बताते हैं। वो कहते हैं कि श्रवणात, श्रवण करो मेरे बारे में, दर्शनात मेरे विग्रह का, सुंदर विग्रह का दर्शन करो, ध्यानात मेरा ध्यान करो, और मई भावोनु कीर्तन, मेरा भावपूर्ण कीर्तन करो। बस यही विधि है मुझे पाने की। तो देखिए, जो जीव जो अपने भौतिक अस्तित्व में अटका हुआ है, उसको भगवान मार्ग दे रहे हैं, ये वैधि भक्ति का मार्ग दे रहे हैं भगवान यहां पर, कि भक्ति क्या है, कैसे प्रारंभ करनी चाहिए। श्रवणात दर्शनात ध्यानात, प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं, श्रवण कीर्तन, सबसे पहले श्रवण करो, और भगवान ने भी यही कहा। तो ये वैधि भक्ति का मार्ग दे रहे हैं, जिसको गोपियां स्वीकार नहीं करेंगी। गोपियों क्यों स्वीकार नहीं करेंगी? क्योंकि गोपियों का स्तर बहुत ऊंचा है, वो ये सब कर चुकी हैं कई जन्मों में। लेकिन फिर भी कृष्ण उसको, उनको क्यों कह रहे हैं ये सब करने के लिए? वो उनके लिए नहीं कह रहे हैं, वो हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए समझा रहे हैं कि वैदिक भक्ति का क्या मार्ग है। तो इसीलिए वो कहते हैं, श्रवणा दर्शना ध्याना मई भावोनु कीर्तना, तुम श्रवण करो मेरे विषय में, तुम देखो मेरे विग्रह को, सुनो, ध्यान करो, और बहुत भावपूर्ण कीर्तन करो, और इसी से आपको भक्ति प्राप्त होगी। तो गोपियों ने कहा, हमें नहीं चाहिए ऐसी भक्ति, ये आप ही रखिए, हमें ये जानना चाहिए कि भक्ति मार्ग में सबसे पहले वैधि भक्ति बड़ी आवश्यक है। हम सीधे राग भक्ति या रागानुगा भक्ति के ऊपर नहीं जा सकते, या उस पर हम कूद नहीं सकते हैं। जब तक वैधि भक्ति का पालन नहीं होता है, विधि विधानों का पालन नहीं होता है, हृदय में स्फुरित नहीं होती है वो भक्ति, जिसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। और अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हम छलावा करते हैं, हम धोखा देते हैं लोगों को। अगर हम कहते हैं कि मैं तो हर जगह कृष्ण ही कृष्ण को देख रहा हूं, मुझे कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये झूठ है, ये धोखा है। अगर किसी ने वैधि भक्ति का पालन नहीं किया तो वो कभी कृष्ण को नहीं पा सकता। इसीलिए कृष्ण यहां गोपियों को कहते हैं, दरअसल वो कह नहीं रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या तुमने इसका पालन किया है, क्या वैधि भक्ति का पालन किया है जो मुझे पाना चाह रही हो। तो इसीलिए जीव को, हम सबको पहले नियमों का पालन करना चाहिए, भक्ति के नियम। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बड़े सरल नियम दिए कि हमें मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री संग नहीं करना। तो ऐसे बहुत ही सरल नियमों को प्रभुपाद ने दिया, और सबसे महत्वपूर्ण नियम भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर गोपियों से जब ऐसा कहा भगवान ने, दरअसल परीक्षा ले रहे थे, पूछ रहे थे तुमने किया है कि नहीं ये सब, तो गोपियों ने कहा ये तो हम बहुत जन्म पहले कर चुकी हैं ये सब, ये श्रवण, ये दर्शन, ये ध्यान, ये सब हो गया हमारा। दरअसल कृष्ण की भक्ति में वही आता है जो जन्मों जन्मों तक बड़ी योग तपस्या कर चुका होता है, व्रतों का पालन कर चुका होता है, अनुष्ठान कर चुका होता है, तभी वो कृष्ण के मंदिर में आकर कृष्ण को दंडवत कर सकता है, अन्यथा उसको ये अवसर नहीं मिलता कि वो कृष्ण को आकर प्रणाम भी कर सके। तो आप सब जो नियमित रूप से इस मंदिर में आते हैं, कृष्ण के घर में आते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो आपके भी पूर्व जन्म में आप सब बड़े बड़े तप अनुष्ठान कर चुके हैं, तभी यहां पर आए। लेकिन अब वैदिक भक्ति का पालन होना चाहिए, नियमों का पालन। तो गोपियों ने कहा हमने कर लिया और हम यहां से नहीं जाएंगे। और फिर वो कहने लगी कृष्ण से कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, हम अपना सब कुछ त्याग कर आए हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है अब इस जगत में, और केवल आपको हमने समर्पण किया है। तो ये गोपियां वैदिक भक्ति के उद्देश्य को बतला रही हैं। कृष्ण ने कहा वैदिक भक्ति पालन करो, गोपियों ने कहा कि हमने वैदिक भक्ति के उद्देश्य का पालन किया है। वैदिक भक्ति का अंत क्या है? कृष्ण को समर्पण। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। तो जब सारी विधि विधानों का उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण को पूर्ण समर्पण, तो फिर गोपियों ने कहा कि अरे ये तो हम पूर्ण समर्पण कर रहे हैं आपको, फिर आप हमें फिर से वैदिक भक्ति करने को कैसे कह सकते हैं? तो फिर कृष्ण ने स्वीकार किया कि हां ये सही बात है। तो इस प्रकार से उनके बीच में वार्तालाप हुआ और फिर कृष्ण ने रास नृत्य प्रारंभ किया। रास नृत्य करते करते गोपियों के हृदय में एक थोड़ा सा अहंकार आया। गोपियां सोचने लगी, हर गोपी ये सोचने लगी कि मैं इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ गोपी हूं या स्त्री हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो गलत नहीं था, क्योंकि कृष्ण जिनके साथ हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं ही। लेकिन गोपियों के लिए सोचना, भगवान ने सोचा सही नहीं है, ये अहंकार ठीक नहीं है। तो भगवान यहां दिखला रहे हैं कि अगर किसी ने वैदिक भक्ति का पालन किया है, वैदिक भक्ति के आगे की श्रेणी में भी चला गया है, लेकिन अगर उसके हृदय में अहंकार है, नम्रता नहीं है, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी मान देन कीर्तनीय सदा हरि, तो वो हरि का कीर्तन नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसलिए कृष्ण वहां से चले गए, उन्होंने त्याग दिया उस स्थान को, क्योंकि गोपियों का अहंकार हुआ था, तो अहंकार को चूर कर दिया। इसीलिए भक्ति में बड़ा सावधान रहना चाहिए, हमें छोटी छोटी चीजों में अहंकार हो जाता है। गोपियों के लिए अहंकार होना ये तो स्वाभाविक था, कोई गलत नहीं था। अरे जिनके साथ में कृष्ण हो उनको अहंकार होना ही चाहिए, हाँ, लेकिन वो शुद्ध अहंकार। दो प्रकार के अहंकार होते हैं, एक मिथ्या अहंकार और एक शुद्ध अहंकार। मिथ्या अहंकार का अर्थ होता है अपने आप को शरीर मानना और अपने आप को भोक्ता मानना, और शुद्ध अहंकार का अर्थ होता है अपने आप को कृष्ण का दास मानना, ये शुद्ध अहंकार कहलाता है। तो फिर हमें भक्ति में बड़ी छोटी छोटी चीजों में अहंकार हो जाता है, हमें कोई थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाती है हमें अहंकार हो जाता है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, हमें कोई पद मिल जाता है हमें अहंकार हो जाता है। तो यहां कृष्ण दिखला रहे हैं कि कोई भी पद क्यों ना हो, प्रसिद्धि क्यों ना हो, चाहे गोपियों का ही पद क्यों ना हो, अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई पद है, हमारे पास कोई यश है, हमारे पास धन है, बल है, इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, जान लेना चाहिए मेरा नहीं है, भगवान का है, तब अहंकार नहीं आएगा। अगर हमारे पास बहुत बल है और उस बल को हम भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानकर कि ये मेरा बल है, जैसे कभी कभी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी को उठाना होता है, जगन्नाथ जी बड़े भारी हैं, तो कोई ये सोचे कि अरे हट जाओ तुम लोगों से नहीं होगा मैं करता मुझे बहुत बल है, तो ये अहंकार है। अगर किसी के पास बहुत धन है और वो धन देता है मंदिर में भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन अगर वो सोचे कि देखो मैं कितना सारा धन देता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना धन देता है इस मंदिर में, ये अहंकार है। श्रील प्रभुपाद ने एक समय एक व्यक्ति से कहा, मायापुर में छत पर टहल रहे थे, एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। प्रभुपाद ने पूछा क्या काम करते हो, कहा कि मैं ग्लास बनाता हूं, कांच बनाता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा तुम चोर हो। तो घबरा गया आदमी, अरे अभी अभी मिले हैं पहली बार, बोले तुम चोर हो। तो प्रभुपाद ने कहा कि कांच बनाने के लिए सामान कहां से लाते हो, तो उसने बताया यहां से ये फिर कहा रेत लाता। तो रेत किसकी है, रेत रेत तो ऐसे फिर ऐसे नहीं पड़ी है, भगवान की है वो, और तुम चुराते हो उसको, तुम चोर हो। देखिए प्रभुपाद ने कितना सरल शब्दों में हम सब के लिए कितना बड़ा संदेश दिया है कि हम सब भगवान की संपत्ति लेते हैं, उसी से कमाते हैं, उसी से खाते हैं और उसको अपना कहते हैं। ये सारी पृथ्वी किसकी, हम जिस पर रहते हैं, हम एक छोटे से टुकड़े पर कागज पर नाम लिख देते हैं, ये इतने बाय इतना ये मेरा जमीन है। भगवान ने हमारे लिए खाली 6x3 फुट जमीन रखी है। वो भी नहीं है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, उसको भी खत्म कर देते हैं। लेकिन हम लोग बड़ी बड़ी जमीनें, बड़े बड़े धन दिखाते रहते। तो प्रभुपाद ने कहा तुम चोर हो। तो फिर सबने जाकर कहा धीरे से, प्रभुपाद मंदिर को डोनेशन देते हैं। प्रभुपाद ने कहा तुम मंदिर को डोनेशन देते हो, उसने कहा ठीक है तो तुम छोटे चोर हो। लेकिन चोर तो हो, प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि तुम चोर नहीं हो, चोर हो, चोरी करते हो। तो अगर हमारा धन, हमारा बल, हमारा यश, हमारा पद हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो ये अहंकार है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे हृदय में वैराग्य को देखकर। महाप्रभु रे भक्त बने रे वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है ना गौर भगवान। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब हृदय में वैराग्य को देखते हैं। और वैराग्य हृदय से होना चाहिए, ऐसा वैराग्य नहीं कि कपड़े उपड़े फाड़ कर घूम रहे हैं कि हम बड़े वैरागी हैं, वो वैराग्य नहीं, वो दिखाई का वैराग्य नहीं। अनासक्त होना, अनासक्तस्य विषयान्, रूप गोस्वामी कहते हैं कि विषयों से अनासक्त होना ये सही वैराग्य है, ये वैराग्य की परिभाषा है। युक्त वैराग्य मुच्यते, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाए, सड़कों पर घूमे कि मैं बहुत बड़ा वैरागी हूं। ऐसे कई वैरागी हैं जो सब कुछ छोड़कर घूमते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, कहते मैं बहुत बड़ा वैरागी हो गया हूं। कोई आवश्यकता नहीं, केवल हृदय में वैराग्य उत्पन्न करना। अगर हृदय में वैराग्य नहीं है तो बाहरी वैराग्य का कोई दिखाव, कोई लाभ नहीं है। तो फिर कृष्ण ऐसे अहंकार को चूर चूर कर देते हैं, कृष्ण आते नहीं है हमारे पास। तो गोपियों के पास से भी कृष्ण चले गए, गोपियां ढूंढने लगी। बहुत सुंदर वर्णन है, ये सारा वर्णन भागवत के 4 अध्यायों में आता है। तो गोपियां ढूंढने लगी कृष्ण को, कृष्ण मिले नहीं। फिर कृष्ण का स्मरण करने लगी, उनकी वेणु का स्मरण करने लगी, गीत गाने लगी, बहुत जगह ढूंढा नहीं मिले। फिर यमुना के तट पर आ गई, वहीं बैठकर स्मरण करने लगी। और फिर जब बहुत ज्यादा उनका स्मरण बढ़ गया, उनको पश्चाताप हुआ हृदय में, और तब फिर कृष्ण वहां पर आए। और जब कृष्ण वहां पर आए तो बहुत प्रसन्न हुई गोपियां, और थोड़ी थोड़ी क्रोधित भी थी कि कृष्ण गए क्यों थे। तो फिर उन्होंने कृष्ण को आराम से बिठाया और फिर कृष्ण से प्रश्न किया। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि अरे आप चले क्यों गए थे, वैसे सीधे नहीं पूछा, क्योंकि डर रही थी कि सीधे पूछा तो फिर चले जाएंगे। तो उन्होंने जरा घुमा फिरा के पूछा कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो अपनों को ही छोड़कर चले जाते हैं। और कृष्ण भी बड़े चतुर हैं, तो उन्होंने अलग अलग लोगों का वर्णन कर दिया। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी से प्रेम नहीं होता, वो चले जाते हैं। कुछ आध्यात्मवादी होते हैं जो केवल अपने से प्रेम करते हैं, इसीलिए जगत को छोड़ देते हैं, इत्यादि इत्यादि। कुछ आत्म साक्षात्कारी होते हैं। और फिर कृष्ण ने कहा, मैं जीव को इसलिए छोड़ता हूं। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कृष्ण कहते हैं गोपियों से, हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, वो लोग अपने आप आ जाएंगे प्रभु जी। ये सब आप लोगों को प्रवचन के पहले करना चाहिए। प्रवचन के बीच में सब हिलते रहेंगे तो हमारा भी ध्यान ऐसे लहरों की तरह ऊपर नीचे हिलता रहेगा। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं। इससे बहुत सुंदर उदाहरण भगवान देते हैं। वो कहते हैं कि कैसे प्रेमा भक्ति प्रगाढ़ होती है। कहते हैं कि वो उस निर्धन के समान हो जाता है, वो भक्त जिसके पास अभी अभी उसको धन मिला था लेकिन वो धन खो गया। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति प्राप्त हुई है और वही उसकी सारी संपत्ति है, अचानक वो संपत्ति खो जाए और निर्धन हो जाए, तो वो क्या करेगा? देखिए, निर्धन हो गया, हमारी बिजली की संपत्ति चली गई, तो वो क्या करेगा? वो केवल उसका स्मरण करता रहेगा, है ना, कब बिजली आएगी, कब बिजली आएगी। तो क्योंकि उसका धन चला गया है तो उसका केवल स्मरण वही होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं थोड़ा सा उसको प्रेम देता हूं और फिर हट जाता हूं, ताकि उसको जो धन मिला है उसके लिए वो बार बार लालायित हो, उसका ही मेरा ही स्मरण करे। जैसे नारद मुनि छोटे से बालक थे, अपनी मां के साथ रहते थे, और फिर एक समय ऐसा आया जब मां को सांप ने डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। इस बच्चे को या तो बिठा दीजिए कहीं पर या फिर पीछे ले जाइए। आप लोगों से विनती है कि आप लोग जरा बच्चों को संभाला करिए। ये छोटे बच्चों की गलती नहीं है, ये पेरेंट्स की गलती है। बिजली आ गई। कहां पर थे हम लोग? नारद मुनि। तो नारद मुनि छोटे से बालक थे, उनकी मां की मृत्यु हो गई, सांप ने काट लिया। नारद मुनि चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। बहुत कड़ी तपस्या की उन्होंने, बड़े भयानक जंगल में अकेले बैठकर। और फिर ऐसे समय में भगवान ने उनको दर्शन दिए, एकदम एक क्षण के लिए दर्शन केवल। हरे कृष्ण। केवल एक क्षण के लिए दर्शन दिए और उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और नारद मुनि ने बहुत प्रयास किया फिर से ध्यान लगाने का, कि फिर से भगवान के उसी मुखारविंद को देखूं, उस रूप को देखूं, लेकिन भगवान नहीं आए। और फिर भगवान ने कहा कि नारद, अब मैं इस जन्म में तुम्हें नहीं दिखने वाला हूं, अब तुम तपस्या करो और अगले जन्म में दर्शन दूंगा। भगवान ऐसा करते, पहले लॉलीपॉप खिला देते हैं, वो मीठा खाने की आदत हो जाती है, फिर वो मीठा मांगता है, तो भगवान कहते हैं जेब से पैसा निकालो और खर्चा करो, फ्री नहीं मिलेगा। पहले फ्री दे दिया, अब नहीं मिलेगा। तो नारद को कहा, एक बार दर्शन दे दिया, तपस्या करो, ये तपस्या हमारा, हम धन जो देते हैं भगवान को। इसलिए ऐसे भगवान अंतर ध्यान ऐसे भगवान देते हैं केवल थोड़ा सा दिखला कर फिर तपस्या करने के लिए कहते हैं। तो भगवान गायब हो गए चले गए तो भगवान ये बतला रहे हैं कि मैं इसलिए गया था ताकि उस निर्धन व्यक्ति की तरह आपका भी स्मरण तीव्र हो जाए। हालांकि बाहरी दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि गोपियां बहुत दुखी हैं, लेकिन गोपियां दुखी नहीं थी। गोपियों को एक दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही थी और यही दिव्य आनंद देने के लिए कृष्ण वहां से चले गए थे। इसको विरह की भक्ति कहते हैं। तो जब जीव वैदिक भक्ति का पालन करता है, वैदिक भक्ति के उद्देश्य रागानुग भक्ति को प्राप्त करता है और फिर वो और आगे बढ़ता है भक्ति में, तब विरह की भक्ति प्राप्त करता है। दो प्रकार की भक्तियां होती हैं, एक मिलन की भक्ति और एक विरह की भक्ति, जिसमें विरह की भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। तो फिर जीव इस विरह भक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है, जहां कृष्ण का सानिध्य उन्हें मिलता है। लेकिन वो तीव्रता हृदय में आनी चाहिए जो विरह भाव में आती है। बार बार कृष्ण का स्मरण होता है और इसकी शुरुआत होती है इच्छा से। हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए। जैसे जब गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी को सुना तो उनके हृदय में इच्छा तीव्र हो गई कृष्ण को देखने की। इसी तरह जब हम शास्त्रों की वाणी से, शास्त्रों के शब्दों से कृष्ण के विषय में सुने तो हमारे हृदय में इच्छा तीव्र होनी चाहिए कृष्ण को पाने की, और तब हम कृष्ण को पाने के योग्य बनते हैं। और फिर आगे चलकर वैदिक भक्ति और उसके बाद रागानुग भक्ति और फिर भक्ति की चरम सीमा विरह भक्ति, जिसे षड गोस्वामियों ने प्रदर्शित किया। षड गोस्वामियों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अरे कृष्ण यहां बैठे हैं, राधा रानी वो तो अभी मेरे सर पर अपना आंचल पकड़कर खड़ी थी, कभी नहीं कहा। हालांकि वो कृष्ण की नित्य लीलाओं का दर्शन करते थे, लेकिन वो कहते थे हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, आप कहां हैं कृष्ण, आप कहां हैं, हे श्रीमती राधा रानी आप कहां हैं, मैं आपको ढूंढ रहा हूं। ये विरह की भक्ति है। तो ये हमारी रासलीला है। एक वो रासलीला थी जो कृष्ण ने रचाई, एक वो रासलीला है जो जीव रचा सकता है। और वो रासलीला का प्रारंभ होता है कृष्ण की बांसुरी अर्थात शास्त्रों से, और उसका अंत होता है कृष्ण के चरण कमलों में। तो इसलिए आज के दिवस पर, शरद पूर्णिमा के अवसर पर, अगर हम सही दृष्टि में रासलीला को समझना चाहते हैं तो हमें अपने हृदय में कृष्ण को पाने की इच्छा को तीव्र करना चाहिए। और ऐसी तीव्र इच्छा से हम नियमों का पालन कड़ाई से कर सकेंगे, और नियमों का पालन जब कड़ाई से होता है तब हृदय में दृढ़ता आती है, तब हम दृढ़ भक्ति कर पाते हैं। ये शाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर हम दृढ़ भक्ति करते हैं और ऐसी अवस्था में पहुंचकर हम पूर्ण समर्पण कृष्ण को करते हैं। तो आज का दिवस ये समर्पण का दिवस है, जहां हम कृष्ण को पूर्ण समर्पण करें जैसे गोपियों ने किया। गोपी भाव या गोपियों को अनुगमन करना, अनुसरण करना का अर्थ ये नहीं है कि हम गोपियों की तरह कृष्ण के पीछे भागें। ये सहजीय भाव है, असली गोपी भाव है पूर्ण समर्पण जो गोपियों ने किया बिना किसी समाज के दृष्टि को देखते हुए। ऐसा नहीं सोचा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, एक दिन गणपति नहीं लाया एक साल तो समाज क्या कहेगा, राष्ट्र क्या कहेगा, गणपति जी क्या कहेंगे, कोई ख्याल नहीं। केवल कृष्ण एकेह गुरु नंदनः। तो ऐसी भक्ति जब हम करेंगे कृष्ण की, इसको समर्पण कहते हैं। तो इसलिए इन चीजों को आप ध्यान रखिए। हमारी इच्छा से प्रारंभ होता है, फिर हमें मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है एक गुरु के द्वारा, और जब गुरु के मार्ग निर्देशन में हम नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तब हम दृढ़ भक्ति कर पाते हैं और दृढ़ भक्ति करते हुए हम पूर्ण समर्पण कृष्ण को कर सकते हैं। तो रास लीला इसका यही एक उद्देश्य है कि हम कृष्ण को पूर्ण समर्पण करें और उसके द्वारा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में अपने आप को लगाएं। और इसकी शुरुआत होती है श्रवण और कीर्तन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी भगवान के दर्शन होंगे। जैसे कि हमने बतलाया कि आज से कार्तिक प्रारंभ हो रहा है, तो दीपदान भी आज से प्रारंभ होगा। दीपदान का अर्थ होता है भगवान को दीप दान करना, देना। तो सभी लोगों को आज ये अवसर मिलेगा कि वो भगवान को दीप दिखा सकें, अर्पण कर सकें, और साथ ही साथ ये सारा दीपोत्सव भी यहाँ होगा। तो इससे पहले कि भगवान के दर्शन हो, हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि कार्तिक के महीने में कार्तिक व्रत के कुछ नियम हैं। और उनमें से पहला नियम है कि हम लोग रोज दामोदर अष्टकम का पाठ करें। ये पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। रोज दामोदर अष्टकम का पाठ करें, भगवान को दीप अर्पण करें पूरे महीने, और अपने खाने में सबसे प्रिय वस्तु को त्याग दें। ये पुराणों में लिखा है, हम नहीं कह रहे। तो हमें आशा है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत सारे भक्त या यहाँ बैठे हुए सभी भक्त इस व्रत का पालन करेंगे। कृपया इस कार्तिक व्रत का पालन कीजिए। हर रोज हर शाम को और हो सके तो सुबह भी यहाँ पर आइए। मंदिर में भगवान को दीप अर्पण होंगे रोज सुबह ठीक 7:45 बजे और शाम को ठीक 7 बजे। तो आप सबसे विनती है कि आप लोग एक महीना पूरा और कोई व्रत नहीं ले सकते हैं तो ये व्रत लीजिए कि एक महीना मंदिर आएंगे। ऐसे बहुत सारे व्रत हैं जिनको आप ले सकते हैं। कार्तिक में भक्ति करने का बड़ा लाभ होता है। एक व्रत ये ले सकते हैं आप कि हर रोज मंगल आरती आएंगे। ये बहुत अच्छा व्रत है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे इससे। गोपियाँ रात में गई थी, आप कम से कम सुबह सुबह आ जाएंगे। दूसरा व्रत ये ले सकते हैं कि नहीं, रात में अंधेरा ज़्यादा होता है, भगवान ने मना किया है अंधेरे में नहीं आना चाहिए, तो कम से कम 7:15 बजे दर्शन के लिए आ सकते हैं। और तीसरा, हर रोज भगवान को दीप अर्पण करने के लिए, दामोदर अष्टकम करने के लिए आप सब यहाँ आइए। उत्सवों में हम बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान को दीप अर्पण कर सकें। ये पूरा कार्तिक महीने में कई उत्सव हैं, जैसे आगे चलकर दीपावली आएगी, उस दिन भी ऐसे ही दीपोत्सव होगा। फिर गोवर्धन पूजा यहाँ पर मनाई जाएगी, जहाँ पर पर्वत होगा गोवर्धन पर्वत बनाया जाएगा यहाँ पर। वैसे कई उत्सव, श्रील प्रभुपाद का प्रभाव दिवस भी आने वाला है इसी महीने में। तो आप सब कृपा करके इन सारे उत्सवों में भाग लीजिए और इस व्रत का पालन जरूर कीजिए। हर रोज दामोदर अष्टकम का पाठ, भगवान को दीपदान, और अपने खाने की एक प्रिय वस्तु को एक महीने के लिए त्याग दीजिए। लेकिन जो प्रिय वस्तु हो उसको त्याग दीजिएगा, उपमा और पोहा त्यागने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। तभी हम लोग अभी भजन गाएंगे, और भजन के बाद जब दामोदर अष्टकम होगा, तो दामोदर अष्टकम के बाद आप लोग सब उठकर भगवान को दीप अर्पण कीजिएगा। तब तक अपने स्थान से कोई नहीं उठिएगा, क्योंकि भीड़ बहुत है, पीछे तक लोगों को दर्शन होने चाहिए। आज का दिवस बहुत अच्छा इसलिए भी है शुभ कि ये टेम्पल हॉल पूरा भरा हुआ है, जगह नहीं है। जब भक्त आते हैं, भक्त दरअसल मंदिर के लिए ऐश्वर्य है, तो आज इस मंदिर का ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया है, इतने सारे भक्त आए हैं। तो इसलिए सब बैठे रहिएगा, कृपया खड़े मत होइएगा। जब भी दर्शन खुलेंगे आप सबको दर्शन मिलेंगे, और बाद में आगे आकर दीप अर्पण करने का भी अवसर मिलेगा। लेकिन जो जहाँ हैं वहीं बैठें। आज का दिवस भजन का दिवस है, तो हम लोग भजन करेंगे, दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे, और उसके बाद दीपदान प्रारंभ होगा। तो जब तक आपसे कहा नहीं जाए, आप लोग खड़े मत होइएगा। हरे कृष्ण।